तेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा तू मेरे मोती बन चेहरा खिला, अच्छा लगा अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना।
ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे इतने सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली है कि विश्व के एक कोने में से भगवान ने हमें सिलेक्ट कर लिया। भगवान की सिलेक्शन है। हम इतने भाग्यवान हैं कि इतनी सारी बड़ी दुनिया में इतनी कोटि आत्माओं में से बाबा हमें मिला, और इसीलिए वो सुख को बाबा का बनकर हम बढ़ाते हैं। हम बाबा के बच्चे बाबा का बनकर इस जन्म के सुख को बढ़ा रहे हैं। कई भाई बहने प्रोग्राम में आते हैं, फिर पूरा दो मास नहीं आते, फिर प्रोग्राम में आते, फिर दो मास नहीं आते, फिर भी क्या कहते, यहां आते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर हम तो हर रोज, कई भाई बहने तो दिवस में दो या तीन बार वो सुख को अनुभव करते हैं। तो सोचो हमारे जैसा भाग्यवान विश्व में कोई है नहीं, क्योंकि हमें ईश्वरीय जीवन मिली है। ईश्वरीय जन्म होते ही एक नया जीवन हमारे बाबा ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, लॉटरी के रूप में दिया है, स्पेशल ऑफर के रूप में दिया है, एक नया जीवन, एक नया जन्म, एक नई पहचान। पूछो अपने आप से, बाबा मिला उससे पूर्व हम क्या थे और कैसे थे, और बाबा मिला उसके बाद आज हम क्या हैं और कैसे हैं। हुआ है कोई अंतर? बहुत हुआ है। वो अंतर लाने वाली बातें कौन सी है, आज हम उसको अंडरलाइन करेंगे। हो सकता है वो बातें आपके जीवन में वर्तमान में बहुत अच्छी तरह से हो, तो आप उसको मेंटेन करना, मजबूत करना। हो सकता है उसमें कहीं थोड़ा कच्चा पक्का हो, तो ये भट्टी की सौगात आप उसे और पक्का करना। हो सकता है कई बातें आपको पता ही ना हो, तो उसको जानकर समझकर मानकर क्या करना, उसके ऊपर चलना। आज उषा बहन ने स्वस्थिति और स्व अवस्था की सुरक्षा में एक बहुत अच्छी बात बताई थी, संयम, नियम, मर्यादा और श्रीमत। हमारी लाइफस्टाइल ही संयम, नियम, मर्यादा और श्रीमत है। आंख खुलते ही वो चारों ही बातें शुरू हो जाती है। कितना भी बजा हो, रात को लेट भी हो गया हो, तो अभी चिंता रहती, पता नहीं बाजू वाले को भी बोलेंगे, भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे उठा देना अमृत वेले। कहते हैं हमें उसकी वैल्यू पता है, क्योंकि इस ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन अमृत वेला है। जितना अमृत वेला पावरफुल, जितना अमृत वेला प्रॉपर, जितना अमृत वेला समर्थ उतना दिवस और पूरा जीवन पावरफुल। हमारा ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला बहुत 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 प्राप्ति संपन्न होना चाहिए। अमृत वेले की एक किताब है यज्ञ में, बुक मिलती है, आप लेकर के पढ़ लेना दो बार, पता पड़ेगा भगवान वाच अमृत वेला कितना महत्वपूर्ण है मेरे इस संगम युगी जीवन में। और यहां से नक्की करके जाओ, कैसी भी सिचुएशन में मेरा अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, कैसी भी तबीयत में नहीं होना चाहिए, कैसी भी परीक्षा में भी मेरा अमृत वेले में एब्सेंट मेरी नहीं होनी चाहिए। अरे मैं कहती योग नहीं लगता, योग नहीं आता, तो अभी बैठो, आंख खोल के बाबा के सामने बैठो। अगर घर छोटा है, दो रूम किचन का मकान है, तो भी जिस रूम में कोई नहीं वहां जाकर के बैठ के योग करें। अमृत वेला गृहस्थ को आश्रम बनाने की पहली सीढ़ी है। जब शादी किया तब का क्या कहा था वो बाहर के ब्राह्मण ने, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो अभी तक हमने गृहस्थ को आश्रम बनाया? तो ऐसा नहीं कि आबू में आओ तब अमृत वेला, सेंटर पर रहने जाओ तब अमृत वेला, नहीं, मेरे घर में भी मेरा अमृत वेला पावरफुल हो। उसके बाद है मुरली। आप सब कहेंगे अगर मैं पूछूंगी कि भी मुरली कौन मिस करता है, करता है कोई मिस करते? और जिस दिन सेंटर पर नहीं जाते उस दिन कैसे मुरली पढ़ते हो? मोबाइल पर। हम बाबा के स्टूडेंट हैं या मोबाइल के स्टूडेंट हैं? हम टीवी के नीचे स्क्रोलिंग आता है पीस ऑफ माइंड में, फिर कोई क्या कहते, बहन हमने वो पढ़ी है मुरली। अरे एक घंटा कोई एक बहन सुनाती तब भी जुट के आते और पॉइंट याद नहीं रहती, तो वो स्क्रोलिंग कैसे याद रहेगी? उसमें सातत्य कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। हम टीवी के स्टूडेंट हैं या भगवान के? हम इंटरनेट के स्टूडेंट हैं या बाबा के? तो मुरली कहां पढ़नी और सुननी चाहिए? अगर बाहर जाना है, अगर कोई काम से आज पॉसिबल नहीं है, तो भी बैठ के बाकायदा मुरली पढ़नी चाहिए। चलते फिरते कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल को जेब में रख के मुरली नहीं पढ़नी है। और आप घर में पढ़ते हो मुरली 15-20 मिनट में पूरी हो जाती, मोबाइल मुरली एप्लीकेशन में MP3 डाउनलोड करके पढ़ते हैं, और सेंटर पर संगठन में पढ़ते हैं, अंतर है कि नहीं? हमारा प्रयत्न हो, हम दूसरे नगर में गए, गांव में गए, सिटी में गए, वहां भी पाठशाला या सेंटर को पकड़ लो, लेकिन मुरली जहां तक हो सके एक तो मिस नहीं करनी है, और दूसरा जहां तक हो सके सन्मुख, बाबा जो कहते हैं ना, संगठन में मुरली पढ़नी है, मुरली सुननी है। ये ईश्वरीय जीवन है, उसकी आइडेंटिटी ये है। विदाउट मुरली ब्राह्मण जीवन पॉसिबल नहीं है। कभी कोई भाई बहने लेट पहुंचते, 7 बजे का क्लास है, 7:30 पहुंचते, 8 बजे मुरली पूरी हो जाती, सबके साथ बाय बाय, आगे की आधी मुरली छूट गई, कब पढ़ेंगे? सेंटर पर बाकायदा बैठ के जो आगे का 1.5 पन्ना छूट गया वो पढ़ के जाना चाहिए। मुरली मैकेनिकल नहीं कि बस आदत पड़ गई, उठे तैयार हुए मुरली पड़ी गए। दादियां इतनी उम्र में अगर 8 बार मुरली पढ़ सकती है तो मैं कहती 4 बार तो पढ़ो, 1 बार सेंटर पर और 3 बार खुद। मोबाइल की मुरली आपकी, टीवी की मुरली आपकी रिवीजन के लिए ठीक है। तीसरी बात, ईश्वरीय जीवन में दिनचर्या का महत्व है। उस दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल बहुत बहुत मायने रखता है। आप सबके मोबाइल में आपने हर घंटे का म्यूजिक सेट किया हुआ है, मुझे पता है। अमृत वेले भी बजता है कईयों का, तो क्लास में भी बजता है, पर उस टाइम रियल में हम ट्रैफिक को कंट्रोल करते या वो बजे जा रहा है और हम भी चले जा रहे हैं? अगर कुछ ऐसा काम है भले काम करते रहे, पर मुझे ये फील हो, ये प्रैक्टिस हो, अगले 1 घंटे के पहले के गीत और इस गीत के इन बिटवीन जो टाइम है, उस टाइम में ट्रैफिक कहां कहां जाम हुआ था, आंखों का, कानों का, मुख का, मुझे उसको कंट्रोल करना है, मन का, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। हम क्या करते, खड़े रह जाते, बाबा 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 ओम शांति, सब ठीक है, लेकिन ये म्यूजिक बजने के निमित्त वो बातें हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करें। बिल्कुल उसी तरह नुमा शाम का योग, आप में से कौन सेंटर पर जाकर शाम का योग करते हैं, हाथ उठाओ। अपने अपने सेंटर्स पर जाकर अपने घर में विदाउट फेलियर कौन शाम का योग करता है, और बाकी के सब शाम को, चलो भाइयों को नौकरी धंधे में आने में लेट हो सकता है, माताएं बहनें, हमारा अटेंशन रहे, जितना महत्व ब्रह्म मुहूर्त का है उतना ही महत्व नुमा शाम का है। फरिश्तों का समय है, एडवांस पार्टी सूक्ष्म में अपनी शक्तियां प्रसारित और प्रवाहित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ढूंढती है। हम वो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा जीवन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम नुमा शाम का योग भी मिस न करें। उसके साथ साथ ईश्वरीय जीवन माना मॉर्निंग टू नाइट तक का काम नहीं, हमारा रहना, खाना, पीना, बोलना, एक दूसरों के साथ संबंध में आना, हर चीज में डिविनिटी हो, हर चीज में एक दिव्यता दिखाई दे, अलौकिकता अनुभव में आए। तो पांचवी बात है, वैसे तो आप सब बाबा के पुराने बच्चे हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पवित्रता हमारे ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। और कोई जगह आप जाओगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पवित्रता की बात नहीं होगी। बाबा के इस यज्ञ में भगवान वाच और परमात्मा कर्तव्य होने के कारण उसका फाउंडेशन है प्योरिटी, पवित्रता। मेरे तन की पवित्रता और उसके साथ साथ आप किताब पढ़ना, संपूर्ण पवित्रता। मेरे संकल्प और वृत्ति की भी पवित्रता। पवित्रता माना स्त्री और पुरुष के भान में आकर दैहिक दृष्टि से देखना और मिलना नहीं, उससे सूक्ष्म। बाबा ने तो वहां तक कहा है, दिनचर्या की ऊंचाई निचाई भी अपवित्रता है। आवश्यकता से ज्यादा हंसी मजाक भी अपवित्रता है। किसी का प्रभाव, लगाव, अभाव, ये तीनों ही अपवित्रता है। जिसके साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा बनता है उसके साथ सब कुछ, और किसी के साथ कोई कारण से कुछ हुआ तो हम डिस्टेंस क्रिएट कर लेते, ये भी अपवित्रता है, अभाव। पर दैहिक पवित्रता उसका फाउंडेशन है, ब्रह्मचर्य व्रत। कल उसके बारे में सचिन भाई जी समझा रहे थे, हमारी प्योरिटी के कारण हमारी ऊर्जा हम अपने लिए यूज करें, और कई स्थानों पर ब्रह्मचर्य व्रत को इतना स्पष्ट समझाया नहीं जाता है, सिर्फ बाबा के यज्ञ में इसे बताया जाता है। इसीलिए बहन और भाई का अकेले में घूमना भी यहाँ अटैचमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म पवित्रता की बातें हैं। छठी पॉइंट है ड्रेसिंग, कपड़ा। हमारे वस्त्र मर्यादा वाले हो, लेकिन साथ साथ सिंपल भी हो। किसी की शादी में जाना है, परिवार में, वो प्रसंग एक अलग मायने रखता है, लेकिन कॉमन लाइफ और रूटीन लाइफ में हो सके इतना सिंपल, हो सके इतना सादा ड्रेसिंग हो, मर्यादा वाला हो, जिसमें से रूहानियत की खुशबू मिले। और सेंटर का यूनिफॉर्म तो आप सबको पता है कौन सा, सफेद ड्रेस, मर्यादा वाला कपड़ा, वो हमारे ब्राह्मण जीवन की शोभा है, इस ईश्वरीय जीवन का वो श्रृंगार है। वो श्रृंगार नहीं जो दुनिया में किया जाता है, क्योंकि आप कहीं पर भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतर के अपने घर जाओगे, जितना भी डिस्टेंस होगा, पूरे रास्ते पर देहबान बढ़ाने वाली दुकानें होगी, जूते की नहीं तो कपड़े की, कपड़े की नहीं तो खाने की, खाने जूते कपड़े की नहीं तो चश्मा जैसा पहनने की, वो नहीं तो हॉस्पिटल, वो नहीं होगा तो ब्यूटी पार्लर होगा, वो सब नहीं होगा तो होटल, वो नहीं होगा तो रेस्टोरेंट, वो उसके आगे वो नहीं होगा तो थिएटर। सब दुकानें जितनी भी आप देख रहे हो सब कैसी है, देहभान बढ़ाने की है। उन सब के बीच हमें रहना है, इसीलिए लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। जितनी हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी रॉयल्टी, हमारी सफेदी पवित्रता, उतना ऑटोमेटिक हमारे आसपास का वातावरण उतना ही शुद्ध, सिंपल और प्योर रहेगा। तो बहुत जरूरी है हम इस यूनिफॉर्म को समझे। फैशन के नाम से हम मर्यादा पूर्वक कपड़ों को न छोड़े। हम तो न छोड़े, चलो हम तो बाबा के बन गए, लेकिन हमारे परिवार की जो यंग बच्चियां हैं उनको भी हो सके तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मर्यादा वाले कपड़े पहनाए, ताकि उसमें उनकी सुरक्षा है और उनकी सुरक्षा से आप सब निश्चिंत है। अगर बच्चों की सुरक्षा नहीं तो माता पिता को चिंता होगी कि नहीं। तो हमारा ड्रेसिंग बहुत रॉयल, बहुत अनुकूल। ऐसा ना हो हम तो छोटे गांव में हैं, वहां गीता पाठशाला चलती है, उस गीता पाठशाला में जो आया वो घर का कपड़ा पहन के चले गए, फिर उसमें छौंक की खुशबू आएगी सब्जी के, रोटी पूरी की खुशबू आएगी जो घर में बेला है, वो भासना नहीं मिलेगी जो ज्ञान योग की मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारा यूनिफॉर्म वाइट हो। इन जनरल लौकिक में भी हमारा सिलेक्शन थोड़ा हल्का कलर हो, रॉयल हो, वो दिव्यता दिखाई दे। छठी बात, हम ब्राह्मण एक दूसरों को आपस में ना धन ले सकते हैं, ना धन दे सकते हैं, ना उसका व्यवहार कर सकते हैं। ये हमारी मर्यादा है। और आपने सोचा कि कोई एक बहन है, बिचारी को मधुबन जाना है, पैसा नहीं है, तो आपने मदद किया 5,000 रुपये की, और उसने भी बोला आकर के थोड़ा नौकरी वकरी करके 6 मास में आपको वापस दे दूंगी। आपने अपनी निमित्त टीचर को बताया नहीं और दिया। 6 मास हो गया, 8 मास हो गया, 9 मास हो गया। आप बताओ आपके क्लास में जब वो बहन आएगी, आत्मा दिखाई देगी, कन्या या माता दिखाई देगी, या पैसा दिखाई देगा? तो हमने अपनी दृष्टि को बिगाड़ा 5,000 रुपये में, अपवित्र नहीं किया, लेकिन वो स्थिति भी तो नहीं रही। एक तो नियम तोड़ा, यज्ञ की सिस्टम को तोड़ा, और अपनी दृष्टि को बिगाड़ा। तो नुकसान किसको हुआ? पैसा देने के बाद भी हमें हुआ। अगर आपकी निमित्त बहन कोई कारण से कहती है वो बात अलग है, बाकी एक दूसरों को आपस में धन देना और लेना ईश्वरीय जीवन की मर्यादा नहीं है। आपको लगता है लौकिक में भी धन की लेन देन ही संबंध को बिगाड़ती है, अच्छा बनाती है? तो अलौकिक में हमें क्या करना है? इस संगठन को मजबूत रखना है और तोड़फोड़ करना है, मजबूत रखना है। इसलिए आपस में धन का लेन देन हम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह ईश्वरीय परिवार वाले हम एक दूसरे, पहले से है बात अलग है, बाकी बिजनेस सेंटर नहीं बना सकते। सेंटर पर हम ये बनाते हैं, आप इसको ले जा करके बेचो नहीं। अगर आपकी दुकान है, अपनी माताएं बहने सेंटर की निमित्त बहने आती और खरीदती है, वो बात अलग है। पर सेवा का केंद्र सेंटर वो बिजनेस बढ़ाने का स्थान नहीं है, वो एक स्थान है सिर्फ भगवान का बिजनेस माना ईश्वरीय सेवा बढ़ाने का स्थान है। हम ब्राह्मण हमारे बच्चों बच्चियों की शादी दूसरे ब्राह्मण के बेटे बेटियों से नहीं कर सकते। ईश्वरीय परिवार में हम ब्राह्मणों का आपस में इस प्रकार का संबंध न हो जिसमें हमारा कल्याण है, हम वो संबंध नहीं बांध सकते। पहले से जो संबंध थे, एक दूसरों के रिश्तेदार बाबा के घर में आए और बाबा के बने, वो बात अलग है, लेकिन पहले संबंध नहीं था। और अभी कोई फेस्टिवल है, उसके बेटे की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, सेंटर की बहनों को पता नहीं है, पूरे क्लास को निमंत्रण नहीं, लेकिन हमारी उससे आबू आते जाते दोस्ती हो गई, हम उसके घर में बर्थडे पार्टी में आना जाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों का आपस में ये संबंध धीरे 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 सेवा केंद्र की यूनिटी में दरारें पाड़ता है, क्योंकि मैं 2 माताओं के साथ गई आई, हमारा 3 का संगठन हो गया, और 2-3 अलग है, और कोई नया आया मेरे में जुड़ा, और नया उनमें जुड़ा, 2 भाग हो गए, हो ही नहीं सकता है, हम ये कर ही नहीं सकते। जानबूझ के नहीं, अननोइंगली भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पवित्रता के साथ साथ जो बहुत पावरफुल धारणा है वो है अन्न शुद्धि। अभी हरेक जो बाबा का बच्चा है, उनके परिवार की सिचुएशन, उनकी अपनी अन्न शुद्धि की धारणाएं, उनका निश्चय सब कैसा है, परसेंटेज में अलग अलग है। हम किसी के संग में आए, क्या होगा? वहां तो बिस्किट खाते हम भी खाएं। अभी तक हम नहीं खा रहे थे, लेकिन अब दूसरों को देखकर हमने खाना शुरू किया। अभी तक 15 साल से ज्ञान में चले चला, अभी सोचते नहीं बिस्किट है ना चलेगा, चलो बाबा के पास चलते। तो बात चल रही थी अन्न शुद्धि की। हम बाबा के बच्चों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, हमारा अन्न सात्विक हो, पवित्र हाथों से बना हुआ हो, बाबा को भोग स्वीकार कराया हुआ हो और बाबा की याद में स्वयं ने स्वीकार किया हुआ हो, तब वो अन्न शुद्ध अन्न है। और भोग तो लगना ही चाहिए हमारे घरों में। जिनके घरों में बाबा को भोग नहीं लगता है, हो सकता है अकेले अकेले ज्ञान में चलते हो, फल तो मिलता है ना मार्केट में, फल और दूध का भी भोग हमारे घर में बाबा को लगना चाहिए, बाबा का वरदान है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है वो घर कभी भी भूखा नहीं सो सकता है। इसीलिए अन्न शुद्धि हमारे जीवन की पावर है। आने वाले समय में वो हम सब की सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अभी नहीं पता पड़ रहा है, हम सब की सेफ्टी का साधन अन्न शुद्धि बन जाएगी। इसीलिए हमारा ध्यान हमारे अन्न पर भी होना चाहिए। जो आया खाया, जहां आया खाया। मैं नहीं मानती आप में से कोई खाते होंगे, लेकिन वो अन्न शुद्धि में जहां भी थोड़ा बहुत लीकेज है, हम इस भट्टी में क्या करें, उसको और मजबूत कर दे, उसमें और परिपक्व बन जाए, उसमें और पावर भर जाए। साइंटिफिकली भी अन्न शुद्धि हमारे मन को बहुत मदद करती है। साइकोलॉजिकल भी अन्न शुद्धि कर्मों के हिसाब किताब को कम करती है। शादी में जाएंगे किसी के मैरिज में, हमको जो गिफ्ट देनी होगी, पैसा देना होगा देंगे, लेकिन खाएंगे नहीं तो हिसाब किताब तो पुराने कटते जाएंगे। हम बाबा के बच्चे अन्न में और धन में बहुत बहुत शुद्धता का ख्याल रखने वाले ईश्वर की संतान है। धन के लिए भी बाबा ने कहा है, मांगने से मरना भला। भगवान उवाच, जिसने समय पर ईश्वरीय कार्य में मदद की है, बाबा समय पर उन्हें मदद करने के लिए बंध जाता है। इसलिए हो सकता है हमारे सेंटर पे कोई लाख देने वाला हो, यहां तो बहुत देने वाले, यहां जरूरत नहीं, नहीं, कितना भी कोई देने वाला हो, मेरा भाग्य तब बनता है जब मैंने अपनी हाथों से दिया। इसीलिए तन को भी प्रयोग करें, दिन प्रतिदिन एज बढ़ेगी, तन कम यूज होगा। आज जितना तन में ताकत है कल गारंटी नहीं। मन को भी यज्ञ सेवा में लगाए और धन को भी सफल करें। परसोई की मुरली में थी ना, किसी की दबी रहेगी, परसों नरसों की मुरली में था। फिर हम भी वही प्रायश्चित करें जो दुनिया वाले करते, क्या फायदा। तो बहुत जरूरी है हम अन्न और धन की शुद्धता को समझे, क्योंकि उसकी असर हमारे परिवार में बच्चे तक हरेक के मन पर हो रही है। ईश्वरीय जीवन में अगर कोई चलते चलते भूल हो जाए तो निमित्त को पत्र लिख करके, बिना नाम का नहीं, अपनी सच्चे दिल से अपनी बात बता करके प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि उसका बोझ बढ़े नहीं हमारे मन में। इसलिए जो भी सेवा केंद्र से कनेक्टेड हम आए हैं, भले हम और कोई टाइम पे जाते हो, छोटी बहने मुरली सुनाती हो, लेकिन सप्ताह में एक बार, महीने में दो तीन बार निमित्त बड़ी बहन को कैसे हो ओम शांति करके हमें मिलना ही चाहिए, अगर वो अवेलेबल है तो। और अगर हमारे जीवन में, हमारे लौकिक परिवार में कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लेने की बात आई, कोई बिजनेस बदलना है, बच्चों का कुछ आगे सोचना है, कम से कम हम उसी ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है, इसीलिए निमित्त मेन बहन के साथ उसकी चर्चा करके उनकी श्रीमत अवश्य लेनी चाहिए। हो सकता है आप जिस सेंटर पे हैं, छोटा कोई सेंटर है, आप रात दीदी के पास से तो दूर है, मान लो आपको कोई अच्छी कार खरीदनी है और भट्टी में ये बात सुन करके आपने जाके अपनी सेंटर की बहन को बोला हमको ये कार लानी है, लेकिन वहां बहन ने बोला था पूछ के बता करके लाना है। अभी आपके मन में ख्याल आएगा वो तो छोटी है, उसने तो जीवन में कभी कार देखा नहीं, कार की एवरेज क्या होती है, इंजन कितने सीसी का होता है, कौन सा मॉडल ठीक है, कौन सी कंपनी ठीक है, वो सब उसको तो पता नहीं, वो हमारा विषय नहीं, वो बाबा का विषय है। कहा अगर उसको नहीं पता तो वो बिचारी क्या कहेगी, भले लाओ। किसी की प्रगति में कोई निमित्त में ना तो नहीं बोलेगी, लेकिन पूछने के मार्क्स जो है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो बड़ों को सेवा केंद्र पर निमित्त आत्माओं के साथ कनेक्शन में रहना। बाबा के एक महावाक्य में था, जो आत्माएं यहां पर सेंटर के, यज्ञ के, मेन सेंटर के, बड़ी बहनों के समीप रहती है, वो आत्माएं सतयुग में भी नंबर वन आत्मा के समीप संबंध में जन्म लेती है। इसीलिए दूर से देखा दीदी बिजी थी तो निकल गए, दीदी ने भी देखा लेकिन आप इतना फास्ट निकल गए, दीदी क्या करती, उनको संकल्प आया तो भी प्यार से मिलो। और उसके साथ साथ बहनों की पर्सनल मैटर में हमें कोई भी लेवल पर इंटरफियर नहीं करना है, वो बहन कहाँ गई, उसको क्यों वहां भेजा गया, ये बहन कहाँ यहाँ क्यों है। अगर आपके मन में बहुत संघर्ष चल रहा है तो निमित्त बड़ी बहन के साथ बैठ करके पूछ लो कि मेरे मन में दीदी ये संकल्प आया है, बस काम पूरा। किसी बहन को पर्सनल चीजें लाकर देना, बाबा मुरली में सीधा ही कहता है वो हमारी यज्ञ सेवा नहीं है। आपने मुझे बहुत अच्छी घड़ी ला दी, आप नहीं पहनते, लेकिन आपने कहा अरे ये बहन भट्टी में मिली वही आई है, उनको तो हमें गिफ्ट देनी है, ला दी। जब भी मैं घड़ी पहनूंगी और देखूंगी मुझे टाइम दिखाई देगा या देने वाला दिखाई देगा, तो और नुकसान आपका भी हो गया, आप हमेशा चेक करोगे ये बहन ने घड़ी पहनी है कि नहीं, और मैं भी घड़ी देखूंगी तब कौन याद आएगा, ना बाबा ना समय, ये भाई ने बहुत खुद नहीं पहनता है, मेरे को इतनी महंगी घड़ी लाके दी। पर्सनल गिफ्ट देने की जगह हमें यज्ञ में देना है। हर बहन को यज्ञ से हर प्रकार की आवश्यकता पूर्ण की जाती है, कोई भी छोटा सेंटर हो या बड़ा हो, हमें यज्ञ में देना है। फिर वो किसी को भी दे, वो विषय हमारा नहीं है, बहुत बहुत जरूरी है। और कोई गांव में जाते, दूसरे शहर में गए, भारत में आना हुआ, कोई सेंटर पे जाना हुआ, तो जहां पर भी क्लास करने जाना है थोड़े टाइम के लिए, निमित्त सेंटर इंचार्ज बहन का लेटर ले जाना बहुत बहुत आवश्यक है। इवन मधु बनाओ तो भी ये नहीं मानना कि हमको तो वो भाई पहचानता है ना, रख ले। हो सकता है आपको रख भी लिया हो और आपको अच्छा एकोमोडेशन मिल गया हो, अच्छी पालना हुई हो, लेकिन वो बहन के लिए हमेशा मन में होगा, इनको तो पहचाने वो चला जाएगा। जब हमें आवश्यकता है तब वो बहन क्या मानेगी, भी आपको तो पहचान है, आप तो हमेशा जाते हो, कहा मेरे लेटर की जरूरत है। यज्ञ की सिस्टम, यज्ञ की चैनल ये कहती है, दूसरे सेंटर पे जाना, दूसरे स्थान पर जाना, निमित्त को बता करके लेटर लेके जाना है। अगर हम वहां रहते, वहां से अपने बड़े सेंटर, आप काठमांडू के रिलेटेड कोई गांव में सेंटर में रहते हो, आप काठमांडू जा रहे हो, वहां आपको चिट्ठी की अगर आवश्यकता नहीं है, सब बहनें पहचानती, लेकिन अपनी बहन को बता के जाओ मैं जा रहा हूं। क्यों? अगर उसको काठमांडू कोई चीज भेजनी है, आपने बताया तो आपको एक अच्छा बहाना मिल जाएगा सेंटर पर जाने का, है ना? तो यज्ञ के जो नियम बने हैं, यज्ञ की जो मर्यादाएं बनी है, यज्ञ की जो सिस्टम बनी है, उसको बनाए रखना सच्ची ईश्वरीय जीवन है। और लास्ट, कभी ब्राह्मण परिवार में, मैं तो कहती लौकिक परिवार में भी किसी पर हाथ नहीं उठाना है, अपने बच्चों पर भी नहीं। अलौकिक में तो नहीं उठाएंगे, लेकिन वहां पर भी कभी झगड़ा हो जाए तब भी नहीं। एक चुप सौ सुख। और रात को रोज बाबा को पत्र भी लिखें, और अपने पूरे दिवस का दादी ने क्या काम दिया है, क्या लिखना है, चार्ट अवश्य लिखना है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में ईश्वरीय जीवन की छोटी छोटी बातें, उसमें जहां हम थोड़े भी कमजोर है क्या करें, वहां के स्क्रू टाइट कर दें। मेरा ब्राह्मण जीवन, मेरा ईश्वरीय जीवन यथार्थ हो, मेरा बाबा मुझे एग्जाम्पल बना के रख सके, सैंपल के रूप में दिखा सके, ऐसा हो, तभी मैं मानूंगी कि मेरा जीवन सच्चा है, सफल है और भगवान के काम में आने वाला है। तो हम बाबा को रोज कहेंगे इस भट्टी से एक सौगात लेके जाओ, रोज बाबा को मॉर्निंग में कहो बाबा यूज मी, क्या कहो, क्या बोलेंगे, बाबा, उसका अर्थ क्या होगा माताएं, बाबा मेरा उपयोग करो, जहां जितना उपयोग करना है। मैं रोज सुबह बाबा को कहती बाबा यूज मी, मुझे यूज करो, मेरी जो ताकत है आप यूज करो, है ना? रोज सुबह बाबा को कहेंगे बाबा यूज मी। ओम शांति। बाकी तो